नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं भवतारिणी। मुख्य समाचार। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को आपातकालीन सामग्री की पांचवी खेप भेजी। मृतकों की संख्या 1200 से अधिक हुई। 4000 से अधिक लोग अभी भी लापता। भारत ने रुपये को मजबूत करने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय योजना द्वारा 136 अरब डॉलर जुटाए। मजबूत आर्थिक विकास को देखते हुए जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की संप्रभु रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्ड डी वेवर 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे। और ईरान ने अमेरिका के खिलाफ तनाव बढ़ने के बाद नई रणनीति अपनाने का संकल्प लिया। विस्तार से। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में राहत अभियान तेज कर दिया है और आपातकालीन सामग्री की पांचवी खेप भेजी है। एक रिपोर्ट।
नेपाल में भारत के राजदूत ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राहत और बचाव सहायता लेकर पांचवा भारतीय विमान आज दोपहर नेपाल पहुंचा। भारतीय वायुसेना ने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए कई उड़ानें भरी हैं। भारत ने विशेष तलाश और बचाव सहायता भी प्रदान की। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज संसद में विनाशकारी बाढ़ के प्रति भारत की त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। श्री शाह ने बताया कि नेपाल को भारत, चीन, अमेरिका, जापान, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई स्रोतों तथा बहुपक्षीय साझेदारों से सद्भावना संदेश और भौतिक सहायता प्राप्त हुई है। उन्होंने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री राहत कोष में अब तक 7 अरब नेपाली रुपए से अधिक की राशि एकत्रित हो चुकी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
नेपाल में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1204 हो गई है, जबकि 4216 लोग अभी भी लापता हैं। रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसकी विशेष अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपया विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा में 31 अगस्त 2026 तक 136 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी मुद्रा प्रवाह हुआ है। रिजर्व बैंक ने 8 जून 2026 को FCNRB जमा ECB और OFCB के निवेश को सम्मिलित करने वाली विशेष विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। रुपये की कमजोरी के बीच डॉलर के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घोषित यह सुविधा मूल रूप से सितंबर के अंत तक उपलब्ध थी, लेकिन इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण 1 महीने के लिए कम कर दिया गया। अब FCNBB जमा के लिए ये योजना बंद कर दी गई है, जबकि ECB और OFCB के लिए ये सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी। जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। एजेंसी ने इसके लिए देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि, निजी खपत और सरकारी निवेश के साथ साथ वित्तीय प्रणाली की मजबूती में सुधार का हवाला दिया है। आज एक आधिकारिक बयान में JCRA ने कहा कि मजबूत निजी खपत और सरकारी निवेश के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7% से ज्यादा की तेज विकास दर बनाए रखी है। एजेंसी ने कहा कि सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक विकास में मदद करने वाली नीतियां लगातार लागू की है। JCRA ने बैंकिंग सेक्टर में हुए सुधार की ओर भी इशारा किया और बताया कि इस साल मार्च के आखिर में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन का अनुपात घटकर 1.8% हो गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्ड डी वेवर आज रात 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। श्री वेवर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आवाजाही पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर श्री वीवर भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में मुख्य भाषण भी देंगे। एक रिपोर्ट।
यह किसी बेल्जियम प्रधानमंत्री की पिछले दो दशकों में पहली भारत यात्रा है, जो भारत बेल्जियम संबंधों में एक महत्वपूर्ण नए चरण की शुरुआत का संकेत देती है। बेल्जियम यूरोप में भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर से अधिक रहा। एंटवर्प के प्रमुख वैश्विक हीरा केंद्र होने के कारण हीरा व्यापार दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री 4 सितंबर को मुंबई का दौरा भी करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की मजबूत आर्थिक नींव को रेखांकित करता है। उनके भारत डायमंड बोर्स के प्रस्तावित दौरे से द्विपक्षीय संबंधों में हीरा व्यापार के महत्व और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं को बल मिलेगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से आधिकारिक दौरे पर आज पोलैंड पहुंचे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की से बातचीत करेंगे। पोलैंड में अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद विदेश मंत्री यूक्रेन जाएंगे, जहां वे यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से बातचीत करेंगे। भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध है, जो उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्कों और जीवंत आर्थिक गतिविधियों से चिन्हित है। भारत कनाडा विदेश कार्यालय की वार्षिक परामर्श बैठक आज नई दिल्ली में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेन्द्र टंडन और कनाडाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के उप विदेश मंत्री अरुण थंगराज ने किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति, प्रमुख क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग और दोनों देशों के बीच मजबूत संस्थागत जुड़ाव का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ईरान ने अमेरिका के साथ जारी संघर्ष के बीच नई रणनीति अपनाने की चेतावनी दी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रिजई ने आज सोशल मीडिया पर कहा कि युद्ध के मैदान, कूटनीति और आर्थिक नाकाबंदी से निपटने के लिए तैयार की गई ईरान की नई रणनीति विरोधियों की नींव हिला देगी। एक रिपोर्ट।
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उसकी सेनाओं ने जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन और इराक के स्वायत्त कुर्दिस्तान क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के अनुसार ये हमले अमरीकी सैन्य अभियानों के जवाब में किए गए हैं और इनमें 18 लोग मारे गए हैं। इन नए हमलों से 6 महीने से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए किए जा रहे कूटनीतिक प्रयास और जटिल हो गए हैं। ईरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर दबाव बनाए हुए है, जबकि अमरीका ईरान के बंदरगाहों को निशाना बनाकर नाकाबंदी कर रहा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
सऊदी अरब की राष्ट्रीय शिपिंग कंपनी बहरी के एक तेल टैंकर पर ईरानी हमले में फिलीपींस के 2 नाविक मारे गए। कंपनी ने अपने जहाज सिद्र पर हुई मौतों की पुष्टि की है। सऊदी अरब ने टैंकर को निशाना बनाने की ईरान की कार्रवाई की निंदा की है। कुवैत ने भी सऊदी टैंकर पर ईरानी हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन और समुद्री नौवहन, अपनी सुरक्षा तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए सीधा खतरा बताया। कुवैत ने तनाव बढ़ाने वाली सभी कार्रवाइयों को तत्काल रोकने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 2027 में होने वाली पहली महिला क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी श्रीलंका से हटाकर भारत में आयोजित करने का फैसला किया है। 6 टीम का ये टूर्नामेंट अगले वर्ष 14 से 28 फरवरी तक T20 प्रारूप में मुंबई और वडोदरा में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को आपातकालीन सामग्री की 5वीं खेप भेजी। मृतकों की संख्या 1200 से अधिक हुई, 4000 से अधिक लोग अभी भी लापता। भारत ने रुपये को मजबूत करने के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय योजना द्वारा 136 अरब डॉलर जुटाए। मजबूत आर्थिक विकास को देखते हुए जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की संप्रभु रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- किया। बेल्जियम के प्रधानमंत्री वॉर्ड डी वेवर 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे और ईरान ने अमरीका के खिलाफ तनाव बढ़ने के बाद नई रणनीति अपनाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।